आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अजीज अमीसर के घर में रहे, कब तक रहे, कितना अरसा रहे, कुछ नहीं कहा, क्योंकि इससे कोई सरोकार ही नहीं है। अब अगला सीन आता है, पेज पलटता है, जैसे आप ड्रामों में देखते हैं ना, एक सीन दिखाते हैं फिर उसके बाद एकदम सीन दिखाते हैं, तो उनके बाल सफेद हो चुके होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला कुछ एक ऐसा ही मंजर दिखाते हैं, वह लम्मा बलगा अशुद्दहू, और जब पहुंच गया वो अपनी जवानी को, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए, यानी बीच में कुछ अरसा गुजर गया। अशुद्ध क्या है, शदीद से, अशद नहीं बोला, शीन की पेश है ना, ये बहुत कुछ बोल रही है जो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप यहां समझ लें कि अशुद्ध से क्या मुराद है, जिस्मानी तौर पे भी स्ट्रांग हो गए और मेंटली भी स्ट्रांग हो गए। आप देखिए कि लड़कों के जिस्मानी तौर पे बालिग होने की उम्र अमूमन 14-15 साल होती है, जिस समय चेंजेस आ जाती हैं, हार्मोन्स बनते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, आवाज भारी होती है, लेकिन इसके अंदर आप 10 साल और डाल लेना तो फिर जहनी बलूगत भी आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, नफे और नुकसान का फर्क पता चलता है। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि यूसुफ जवान हो गए, कितने हुए कुछ नहीं बताया। वातैनाहु हुक्मं व इल्मा, हमने उनको हुक्म भी दिया और इल्म भी दिया। अब यहां देखिए हुक्म से क्या मुराद है और इल्म से क्या मुराद है। हुक्म से मुराद है हिकमत, वही पीछे से चल रही इनसाइड। रश कहता है यकीन करें हजरत यूसुफ की जिंदगी पढ़ के, और दुआ किया करें कि अल्लाह हमें भी हिकमत दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ है कि अल्लाह मुझे हुक्म दे, क्योंकि इसी से तो जिंदगी के फैसले खूबसूरत होते हैं। कहा कि हमने उनको हुक्म दी, हिकमत दी, विजडम दी, और वह इल्मा, इल्म दिया। मुफसरीन कहते हैं कि इल्मन से मुराद जहां नबूवत का इल्म है। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनके ऊपर वो आसार शुरू हो गए थे कि अल्लाह ताला उनको नबूवत का इल्म देगा। वह कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम जजा देते हैं मुहसिनीन को, एहसान करने वालों को। जरा नोट कीजिएगा इस जुमले को, लफ्ज़ मुहसिन क्या है, रूट क्या होगा इसका, हुसन, हा, सीन, नून। अमूमन हम क्या सोचते हैं, हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत है, कहते हैं ना उनको आधी दुनिया का हुसन दिया गया। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहि सलाम से भी खूबसूरत है। हजरत आयशा की वो बड़ी प्यारी रिवायत जाके कहीं पढ़ लीजिएगा कि कहा करती थी बड़े लाड में जब अपने शौहर के पास बैठती थी कि वो यूसुफ वालियों ने तो उंगलियां काटी थी, आपको वो औरतें देखती तो दिल काट लेती, इतना खूबसूरत था। तो यूसुफ अलैहि सलाम को यहां अल्लाह ने जो मोहसिन कहा है ना, ये उनके अंदर का हुसन था। और हुसन पे पीछे हम बात कर चुके कि असल खूबसूरती इनसाइट है। आप देखिए, आप जान का टुकड़ा ब्याह के घर ले आए और वो आते ही घर में लड़ाइयां डलवा दे, वो टुकड़ा कितने दिन अच्छा लगेगा। और एक वाजबी सी शक्लो सूरत वाली लड़की या एक लड़का जिसे आप अपनी बेटी को ब्याह दें, अगर वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, वो बहुत केयरिंग है, तो वो शक्ल दब जाती है ना। और यहां लफ्ज है नजजी, इसको नोट कीजिएगा। जजा क्यों कहा, जजा हमेशा किसी काम के बदले की होती है। इससे क्या पता चलता है कि हिकमत जजा है, कोशिश से मिलती है, यानी ये ऐसी नहीं मिल जाती, इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। और मोहसिन कौन होता है, जो किसी को हक से ज्यादा दे। आगे हम देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे मोहसिन बनते हुए दिखते हैं। इंसानों के साथ एहसान क्या है, हक से ज्यादा देना, और अल्लाह के मामले में एहसान क्या है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना गोया कि इंसान अल्लाह ताला को देख रहा है। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में रहे, अब आप देखिए एक और मंजर पलटता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जाहरी हुसन तो खुद दे दिया था, और किसी का जाहरी हुसन उसके अपने इख्तियार में नहीं। आप 10 क्रीमें इस्तेमाल करें, आप फेशियल करा लें, पॉलिश करा लें, जो मर्जी करा लें, जैसा आपने लगना है वैसे ही लगना है। हमारी एक दोस्त थी तो वो बड़ी जॉली सी थी, तो कभी ब्लीच कर आती थी ना, तो फिर वो सोच रही होती थी कि आज हम उसको कहेंगे कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तो जब हम कुछ ना कहते ना तो वो कहती थी बदतमीजो मुझे कह तो दो मैं अच्छी लग रही हूँ। कहती थी मैं कुछ कर भी लूं तो बताना ही पड़ता है कि किया है, तुम लोगों को खुद नहीं पता चलता। लेकिन याद रखिए कि अंदर का हुसन हमारे इख्तियार में है। आप जितने मर्जी खूबसूरत बने, दिल प्यारा करें, लोगों के लिए मोहब्बत लाएं, ये बात नहीं करनी, बुगस नहीं रखना, मैंने बैक बाइटिंग नहीं करनी, मैंने लेग पुलिंग नहीं करनी। और ये अंदर का हुसन कब आता है, जहां इंसान को अपनी औकात समझ आती है और आखिरत समझ आती है। आज कितने लोग हैं जो दौलत में खेल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से इतना बैर खाते हैं कि जल जल के कोयला हो जाते हैं, किसी की तरक्की को देख के, किसी की खूबी को देखकर। तो अंदर का हुसन बहुत था। चलिए अब जरा एक और मंजर देखते हैं, अगला सीन। वरावदत हुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफसी ही, और फिसलाया उसको उस औरत ने जिसके घर में ये रहता था अपने नफ्स से। कौन थी? अब हम में से कई, मैं यही लफ्ज सुनना चाह रही थी। कुरान ने कहीं नहीं कहा, हदीस में कहीं नहीं आता, हमारी लोक दास्तानों में आता है, चंद बनी इसराइली रिवायतों में आता है, पूरे कुरान में कहीं लफ्ज जुलैहा का नाम नहीं है, इवन अजीज मिस्र का नाम नहीं है। ये हमारी एक बनी हुई बात है, अगर वो थी भी जुलैहा तो होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला का अंदाज बताने का देखिए, अल्लती हुआ फी बैतिया, बस वो एक औरत थी जिसके घर में यूसुफ थे। थी कौन? अजीज मिस्र की बीवी। यूसुफ खूबसूरत है, और इंसान पे आजमाइश उसी चीज की आती है जो उसमें बहुत होती है। ये लिख लें अपने पास, जो चीज आपके पास ज्यादा है ना उसी पे आजमाइश आएगी। किसी के पास हुसन ज्यादा है, वो हुसन उसकी आजमाइश बन जाएगा, गुनाहों में जाने का डर है। दौलत आपके ज्यादा आ गई, आप देखिएगा ये दौलत आपकी आजमाइश हो जाएगी, हो सकता है हासिद पैदा हो जाए, गलत काम करें। आपके इल्म ज्यादा है ना तो लोग इल्म की वजह से आपसे हसद करेंगे। कोई भी नेमत ज्यादा होगा, आपके बेटे ज्यादा है, मतलब आप 6 बेटों की माँ है, देखिएगा ये बेटों का होना आपका लोगों को हसद में मुबतला कर देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन उनके लिए आजमाइश बना। चलिए यहां आप एक टाइटल लिख लें इस आयत के ऊपर, अभी तक यूसुफ शिकार हुए थे हसद का और एनिमिटी का, दुश्मनी का, बहुत बुरा लगता है हमें ये, लेकिन इससे बहुत बड़ी आजमाइश जो होती है ना, ये मोहब्बतों की आजमाइश होती है। अब यूसुफ मोहब्बत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कौन सी मोहब्बत? अनवांटेड मोहब्बत, जिसको आज के दौर में लव के नाम पे, लस्ट के नाम पे, रोमांस के नाम पे, और न जाने ये वो चीज है जिस पे हर फिल्म का थीम बनता है। इवन अल्लाह के बंदे कोई रिलीजियस फिल्म भी बनाते हैं उसमें भी लव स्टोरी जरूर दिखाएंगे, हॉरर मूवी है तो वो है। आज पूरी दुनिया हमें जिस मोहब्बत की बात कर रही है ना, वो आपको अब इधर से दिखेगी। मैं चाहूंगी कि इसको जरा एक स्ट्रेच में पढ़ते जाएं, फिर इसमें थोड़ी सी बात हम अपने हिसाब से करेंगे कि यूसुफ तन्हा थे घर में, अब एक औरत यूसुफ के ऊपर डोरे डाल रही है, यानी अब ये रावत दतुल्लती को अब ये कह लेना कि वो डोरे डालने लगी औरत उन पे जिसके घर में थे, तो गलत नहीं होगा। अच्छा हुआ क्या? वगल्लकतिल अबवाब, और बंद कर ली उसने दरवाजे। क्यों कर लिए? क्योंकि यूसुफ उससे भागना चाहते थे और उसको डर क्या था कि यूसुफ मेरे हाथ से ना चले जाएं। उस औरत ने पहले तो खूब जरा अपनी अदाएं दिखाई होंगी, देखिए एकदम एक औरत जिना तक नहीं पहुंचती, अभी हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि औरत का मिजाज क्या और मर्द का क्या। उसने रिझाने की कोशिश की, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके हाथ में नहीं आए। खैर उसने क्या किया, एक दिन मौका मुनासिब देखा, शौहर कहेंगे होंगे कि भाई आज देर से आऊंगा या कल आऊंगा या कोई मीटिंग है कुछ है, उसने मौका गनीमत जाना, यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने कोई इतनी तवज्जो ना दी, इसने जाकर घर के दरवाजे बंद किए। वकालत हई तलक, और फिर कहने लगी आ मेरे पास। ये जो हई तलक है ना, ये ताल के मानों में था कमन, कम हेयर, जिसको हम आप कहेंगे ना कम हेयर, यानी किसी को दावत देना, इसको आज के दौर में आप कह रहे हैं कम हेयर लुक्स। बस लोगों की लुक्स ऐसी होती हैं कि इधर आओ, बहुत सारी बातें मुंह से नहीं कहनी पड़ती, वो दिल जुबान से ही कह दी जाती हैं। खैर इसने यूसुफ को बुलाया, काल माज अल्लाह, यूसुफ बोले अल्लाह की पनाह। नोट कीजिएगा, यूसुफ अलैहि सलाम के पास इस वक्त इस औरत की बात मानने के कितने उजर मौजूद थे। नंबर एक, परदेश में थे, जहां जाके हम वैसे ही मादर पितर आजाद हो जाते हैं, यानी ये तो आम बात है बाहर लड़कों की, मारूफ है, लोग कहते हैं जो पढ़ने आते हैं या जॉब्स के लिए आते हैं वो कहते हैं लो एक आध गर्लफ्रेंड तो रखनी कोई बुरी बात नहीं, लोगों ने तो 4-6 रखी हुई, हम तो बस एक ही रख रहे हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने शादी करनी है। परदेश में थे, फिर वेस्टर्न कंट्री था, फिर तीसरी चीज माँ बाप सामने नहीं थे, फिर चौथी चीज देखिए जवान थे, खूबसूरत थे, अशुद्ध कलश पीछे आ गया, टोटल स्ट्रेंथ जिसके वक्त जज्बात बहुत आम होते हैं। फिर इसके बाद देखिए गुलाम थे, और गुलाम की कैफियत घर के मुलाजिम से बहुत फर्क होती थी कि उसको मानना पड़ता था। फिर छठी चीज देखिए कि औरत पहल कर रही थी, वो कह सकते थे। फिर अगली बात देखिए कि घर की मालकन थी, कोई आम औरत नहीं थी कि जिसको वो नो कह दे, लेकिन एक गुनाह की दावत पर जो लफ्ज सबसे पहले मुंह पर आया वो क्या है? माज अल्लाह, अल्लाह का नाम कैसे आ गया जुबान पे? क्योंकि अल्लाह दिल में था, अल्लाह इज वॉचिंग में, ये है वो तकवा। आप और मैं अपने बच्चों पे कोई कड़ी नजर नहीं रख सकते, हम कोई ऐसी दीवारें नहीं खींच सकते कि दुनिया में कह दें कि इस कोने में सारी लड़कियां कर दो और इधर सारे लड़के कर दो। ठीक है फितरत के और शरीयत के तकाजों को निभाते हुए जब हम सेग्रीगेटेड माहौल रखते हैं, हमारी महफिलें को नहीं होती, बहुत इसके अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन असल जो पर्दा होगा ना, और जो असल सोच होगी ना, वो अपने अंदर की दीवारें होंगी। यूसुफ अलैहि सलाम ने उसकी गुनाह की दावत को कबूल ना किया और कहने लगे, काल माज अल्लाह, यूसुफ बोले अल्लाह की पनाह, क्यों, इन्नहू रब्बी, क्योंकि वो मेरा रब है। बस कहते हैं कि यहाँ रब्बी से मुराद अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह मेरा रब है, सबको पता अल्लाह का नाम है रब। एक दूसरी इसकी तफसीर की जाती है कि नहीं, रब्बी से मुराद यहाँ जो है वो अजीज मिसर है, क्योंकि अरबी जुबान में रब जब अलिफ लाम के बगैर आता है ना रब, तो ये कॉमन होता है। जैसे औरत को कहते हैं रब्बल बैत, घर की मालकन, रब्बुल बलद कहते हैं बादशाह को, ठीक है। तो बस कहते हैं कि यहाँ मुराद यूसुफ की ये थी कि अजीज मिसर जिसने मुझे पाला, जिसका मैंने नमक खाया, मैं उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, क्योंकि आख सनम असवाया, उसने मुझे बड़ा अच्छा ठिकाना दिया, मैं इस बचपन से इधर रहता हूँ, मैं इनका मुलाजिम हूँ, मैं अपने मालिक के साथ खयानत कैसे करूँ कि उसकी बीवी के साथ इस तरह की बात करूं। और साथ ही कहते हैं कि इन हुला युफ्लिहुल ज़ालिमून, और बेशक जालिम तो कभी भी फलाह नहीं पाते। यहां थोड़ी सी बात करके फिर अगली आयत पे चलेंगे। आप देखिए कि अब यहां आप उस बात को समझेंगे जिसको इस्लाम सूरत नूर में और सूरत अल अहज़ाब में और इसी तरह इधर उधर पेश करता है कि नंबर एक, एक औरत और मर्द तन्हा ना हो। हदीस में आता है कि मर्द और औरत तन्हा ना हो, चाहे कोई ये कहे कि मैं उसको कुरान पढ़ाने जाता हूं। एक रिवायत का खुलासा है कि जहां एक मर्द और एक औरत होगा, सालिसहुमा शैतान, तीसरा उनमें शैतान होगा, तो क्या शैतान उनको कुरान पढ़ने का हुक्म देगा, शैतान नमाज का हुक्म देगा? आप कहते हैं हम बहुत नेक हैं, हमारे मर्द बहुत नेक हैं, हमारी बेटियां बहुत नेक हैं, शैतान नेक नहीं हुआ 1400 साल गुजरने के बाद, कि उसकी सुकूनी बदल गई। आज अगर हम इस चीज पे नजर रखते हुए देखें कि कहाँ कहाँ ये खलवत हो जाती है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, सेटअप में ये कहाँ होती है। देखिए इसके बहुत सारे दर्जे हैं जिसकी इस वक्त मैं ना डिटेल्स में जाऊंगी, ना हमारा ये मौजू है, हर बंदा खुद समझे। वमैयत्तकिल्लाहयजल्लहु मखरजा, जो बचेगा अल्लाह उसके लिए जरूर कोई रास्ता निकालेगा। आप कोई ऐसी जॉब करती हैं कि जहां आप सेक्रेटरी बन के एक डॉक्टर के साथ अकेले बैठे हैं, और ऑफिस है और आप सेक्रेटरी बन के बैठी हैं, अल्लाह से मांगिए अल्लाह आपको उससे अच्छा कुछ जॉब दे देगा। यानी इसके बहुत सारे दर्जे होते हैं जो जिस हद पे जाएगा, लेकिन यहां से फितना उठता है। आग और पानी को इकट्ठा करेंगे ना तो धुआं उठेगा। औरत के अंदर खूबसूरती अल्लाह ने दी है, शैतान उसको पुरकशिश करता है और मर्दों के दिल में उसके लिए ख्याल डालता है। दूसरी बात इसमें यह देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यहाँ एक नया दौर शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला हमें अब वो माहौल दिखा रहे हैं कि जहां यूसुफ बड़े हुए हैं। आप ये कहते हैं ना कि आज का माहौल बड़ा खराब है, कहते हैं ना आप, आज से तकरीबन ये 4000 के, अब तो उससे भी ऊपर का वक्त हो गया, इतना पुराना किस्सा सुन रहे हैं। आगे भी आप देखेंगे जो महफिलें सजेंगी, आपको लगेगा आज की पौष महफिलें, आज की वो पार्टीज जिसको आप किटी पार्टीज कह लें, जिसको आप सरंगर पार्टीज और क्या क्या नाम कर दें, जहां सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर 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 है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल उस माहौल में थे। और याद रखिएगा कि जिस माहौल में अल्लाह का दीन नहीं रहता ना, वहां दुनियावी तरक्की डस जाती है। मसलन आप आज के दौर में देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर बहुत तरक्की है ना, लेकिन वहां अगर लोगों को दीन नहीं दिया ना आपने, तो वो हद से बिगड़े हुए हैं। मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ और बड़े शोर से बोलती हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियाँ लड़कियाँ जो नेक है ना, वो बहुत नेक है। अगर आपकी बच्ची का रिश्ता आए परदेश से और वो बताएं कि लड़का तो इतना नेक है, अकीदा भी अच्छा है और मस्जिदों में उसका दिल लगता है, MS ज्वाइन किया हुआ है, फुला फुला, थोड़ी रिसर्च करें, बिस्मिल्ला करके कर दें, क्योंकि वो आपके यहाँ पाकिस्तान के दीनदार पड़े से बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई कहे कि जी जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही है, तो फौरन हाथ रोक लें, क्योंकि जो बिगड़ा होगा ना वो थोड़ा नहीं फिर बिगड़ता, टू एक्सट्रीम्स है। जब इस्लामी तरक्की साथ होती है ना, तो दुनियावी तरक्की अपने रंग को और खूबसूरत करके पेश करती है, और इसका अपोजिट दूसरी तरफ है। ये वो सोसाइटी हो चुकी थी जहां मर्द नहीं गुनाह की दावत देते थे, औरतें देती थी, और किसी परवर्टेड हद से बिगड़ी हुई सोसाइटी का डिक्लाइन क्या है कि वहां औरतें निकल पड़ती हैं मर्द ढूंढने। और वल्लाह ही ये मंजर आज हमें दिखता है, आज हमें ये दिखता है। नाम नहीं लेने की जरूरत, लेकिन इतना दर्द है पिछले 10-12 साल से, जो आंखें देखती हैं, जो सुनती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो हदीस में आता है ना कि एक बकरी जो जुफ्ती के लिए बकरा ढूंढती है, आज की लड़की इस तरह लड़का ढूंढती है। एक औरत जो अपने आप को खूबसूरत सजा के, खुशबुओं में बसा के, अदाएं दिखाती है, वो क्यों दिखाती है? आप याद रखिए कि औरत कभी जिना खुद नहीं करती, लेकिन वो उसके लिए रास्ते हमवार करती है। एक औरत को ये बहुत बुरा लगता है कि वो किसी मर्द को बुलाए और मर्द नो करे, उसकी ना मजरू होती है। जैसे शौहर बीवी में देख ले कि वैसे बीवियां नखरे करती हैं, शौहर की बात नहीं माननी, और अगर शौहर उठ के दूसरे कमरे में चला जाए ना तो उस रात नींद नहीं आती, एक फितरी बात है। औरत ना नहीं सुन सकती, उसको इंसल्ट लगती है कि मेरा शौहर मुझे कह दे कि मैंने तेरे साथ नहीं सोना। यहां आप किस्से को समझिए कि एक बिगड़ी हुई औरत, आप समझिए ना कि सियासी लीडर है ना, वजीर था वो शख्स, उसकी बीवी है, उसने घर के गुलाम को जब दावत दी, उसको 110% यकीन था कि ये मेरी मानेगा, और अगर उसको 5% कुछ भी शक होता ना कि ये मेरा गुलाम मेरी बात नहीं मानेगा, तो कभी इस कैफियत में ना आती कि उसके पीछे भागती और उसके पास आती। वजह क्या थी कि सोच ही नहीं थी उसकी कि ये मेरी बात नहीं मानेगा, और यूसुफ के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। औरतें पहल नहीं करती, लेकिन अपने हाल हुलिये से, अपने कपड़ों से, अपनी अदाओं से, अपने नाज नखरों से बताती हैं कि आओ हमें देखो। देखिए बाज लोग क्या करते हैं, आज बहुत डिफेंड करते हैं, ये मौलवी, ये दरसों वाले, ये बहुत रिजिड होते हैं, हमें देखा हुआ बुरकों वालों को, और हमने देखे हुए दाढ़ियों वाले, और वो दूसरी, हाँ शी इज वेरी इनोसेंट, बस कमीज पहन के आना भूल गई, शमीज में बाहर आ गई, शी इज वेरी इनोसेंट। आज ये कल्चर दिया जा रहा है, जो जितने काम कपड़ों में कहते शी इज इनोसेंट, और जो जरा बहुत पहना कहते हैं ये मुनाफिक हैं, तभी तो पहन पहन के कपड़े फिरते हैं, इनके दिल में चोर है। हालांकि याद रखिए कि फितरत कभी नहीं बदलती। अल्लाह ताला ने यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये दिखाया कि यूसुफ का अपना हुसन उनके लिए फितना नहीं बना। आज हमारा ही कोई लड़का जरा गोरा रंग हो और बाल अच्छे हो तो वो 15 मिनट तो बाल बनाने में लगाता है, और पता नहीं फिर लगते वैसे ही है। मैं कहती हूँ लड़कियां मेकअप करती हैं, कुछ फर्क तो लगता है, लड़का घंटा भी लगा के आ जाएगा देखने में वैसे ही लगता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, पता नहीं वो चेंज होंगे, कोई लट निकाल लें, कोई बाल टेढ़े कर लें, कोई मेढ़े कर लें। यूसुफ खूबसूरत थे ना, वो बिगड़ सकते थे ना, यूसुफ नहीं बिगड़े, यूसुफ के हुसन ने एक औरत को फितने में डाल दिया। आज भी ऐसे बाज नेक शख्स हैं, लड़के दीनदार मर्द बड़े खूबसूरत हैं, वो बुरे नहीं है, लेकिन उनको देख के कई लड़कियां और औरतें जो है वो आहें भरती हैं। बहरहाल उसने दावत गुना दी, वो चाहती थी कि यूसुफ खुद पहल करे मेरी तरफ, मैं उसको बुलाती हूँ। वो है जब वो पहल ना कर चुकी तो फिर आखिरी हद को पहुंच गई, कहने लगी हई तलक कम हेयर, इधर आओ मेरी बात सुनो। उसको बड़ा नाज था कि भाई मैं तो अब बुलाती हूँ तो तुम्हें आना पड़ेगा। खैर अल्लाह की पनाह में आगे। यहां से एक बहुत ही खूबसूरत बात पे हमें पता चलती है कि जो चीज बचाएगी ना हमें और हमारी नस्लों को, वो अल्लाह की पनाह है। कह दे अल्लाह तेरे सपुर्द, अल्लाह तेरे हवाले, मैंने इस तरह करना है। और ऐसे आप जरा इधर यूसुफ की जगह कोई आम मर्द सोचिए क्या हालात होते हैं, और अल्लाह ना करे कि क्या क्या हालात होते हैं ऐसे जगहों पे जहां दौलत भी है, हुसन भी है। आप आजमा के देखें, जिस महफिल में सिर्फ औरतें आएंगी ना, वहां के तैयारियों और माहौल में और किसी रात के पीसी के मिक्स डिनर में तैयारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यूरियस हो जाते हैं लोग। यकीन कीजिए कि अमेरिका की एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि उन्होंने जो किसी भी जगह का इदारा था वहां पहले को माहौल था, यानी मिक्सिंग थी, फिर उन्होंने एकदम उसको चेंज कर दिया। एक ये बात मैंने एक स्कूल के बारे में भी पढ़ी, अमेरिका का एक स्कूल है, कोई इनको विजिट करने गया, कुछ अरसे के बाद दोबारा गया तो उसने कहा कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो लड़के लड़के इकट्ठे थे एक ही क्लास में, अब मैं आया हूं तो आपने लड़कियों का सेक्शन अलग और लड़कों का अलग बना दिया। वजह क्या? उन्होंने कहा इसलिए कि जब लड़के लड़के एक साथ थे पढ़ते ही नहीं थे, उनकी तो मैसेजिंग और टेक्सटिंग चलती है और उनको तो एक दूसरे से, अब अलग अलग किया तो हमारी क्वालिटी बढ़ गई। यही बिल्कुल खबर एक किसी इदारे की थी कि जब से हमने औरतों का सेक्शन अलग और मर्दों का अलग किया हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ गई है। मिसाल देते हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ ना, मुझे कोई केयर नहीं है कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन अगर मैं हर वक्त ये देख मैं कैसी लग रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरा दुपट्टा कैसे है, मैं क्या देखूँ, तो मैं आपको दिल से नहीं पढ़ा सकूंगी। इंसान क्यूरियस हो जाता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस मामले में अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बात दिखा दी कि जब बंदा अल्लाह सुबहाना ताला को याद करता है ना, दरसों में बैठ के याद करना बहुत आसान होता है, जैसे कि इस वक्त हम सबके लिए माशाल्लाह, इस वक्त हम सबको अल्लाह याद आएगा। असल कब होता है? जब असल सिचुएशन पेश आती है। मिसाल ऐसी है कि ड्राइविंग घर के पोर्च में खड़े होकर सीखना बहुत आसान है, ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, पता कब चलता है? जब आप मेन रोड पे आते हैं। यहाँ बैठ के आप तरकीब सुन लें, पढ़ लें, बच्चियां भी आपकी बड़ी खुश होंगी, और आप जाके कहें चलो माचिस लो और चूल्हा जला, तो कहेगी मेरा तो हाथ जल जाएगा। तो जब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस पढ़ते हैं ना, वहां अल्लाह को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत अहम नुकता है, आप इस पे बाद में गौर कीजिएगा। यूसुफ अलैहि सलाम ने कोई रिहर्सल नहीं की थी कि वो मुझे पकड़ेगी तो मैं यूं करूंगा और मैं भागूंगा। अचानक ये सिचुएशन क्रिएट हुई और यूसुफ ने उसका फौरन रिएक्शन ये दिया कि माज अल्लाह। ये कब होता है? जब पहले से दिल में चीज होगी। खुशी में अल्लाह को याद किया हुआ था ना, तो आजमाइश में अल्लाह ताला याद रहा। खैर, अब आगे देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं वलकद हम्मत भी, और अलबत्ता तहकीक उस औरत ने तो उसका पक्का इरादा कर लिया था। अब आई विश कि आप ग्रामर जानते हो, तो आप देखिए वाओ फिर लाम फिर कद, ये तीन ताकीदें हैं इधर। वलकद शिद्दत स्ट्रेंथ यानी डेफिनेटली, श्योर एंड शॉर्ट इंग्लिश में अगर आप कहें, कि उस औरत ने तो पक्का इरादा कर लिया था कि इस मर्द को बहलाऊंगी। और ये जो हम्मत का लफ्ज है ना, ये हम है, वो दुआ में भी ना, वह हम्मी व गम्मी, हम कहते हैं जो दिल के अंदर हो और गैर महसूस तरीके से किसी को उसके इरादे से हटाना, कि उस औरत ने तो ठान ली थी कि इस मर्द को मैं बहला लूंगी। हाँ वह हम भी, हाँ वो भी बहक जाता। अब देखिए हम्मा से पहले लाम नकद यानी शिद्दत नहीं है कि हाँ वो यूसुफ भी बहक जाते, लेकिन क्यों नहीं बहके? लौला अन रा बुरहान रब्बी ही, अगर वो अपने रब की रोशन दलील ना देख लेते। यहाँ बुरहान क्या है? आप जरा सोच के बताइए कि यहाँ बुरहान क्या है? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। अल्लाह ताला कहते हैं उस औरत ने तो पक्के का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन यूसुफ कर लेते क्योंकि इंसान थे, और आम हालात में मर्द इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन नहीं किया क्योंकि अल्लाह ने थाम लिया। कोई आम मर्द तो नहीं रोक सकता। आप देखिए किस तरह के कई वाक्यात आते हैं जिससे हम अपने जवान बच्चों का ईमान बढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाक्य सीरत का आपकी फायदे की खातिर सुना देती हूँ। खुलासा उसका यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए, तो सब लोग हिजरत कर गए, कुछ लोग गिरे पड़े रह गए, जो हैंडीकैप थे, जो बूढ़े थे, जो अलग थे। जब जरा थोड़े से मुसलमान वहां एस्टेब्लिश हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी मरसद बिन मरसद उनका नाम था, उनको भेजा कि आप जाइए और रात के अंधेरों में, चांदनी रातों में, छुप छुप के अपने कैदियों को लेके आइए। कितना मुश्किल काम है दुश्मन मुल्क से अपने कैदियों को उठाना। और अल्लाह के नबी की कामयाबी की एक बहुत बड़ी दलील क्या थी? कि आप बिल्कुल उस बंदे को वो काम देते थे जिसको वो डिजर्व करता था। आज हमारी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए फ्लॉप हो जाती है कि हम गैर मुनासिब लोगों को काम देते हैं। खैर, वो सहाबी गए, जवान भी हैं, सेहतमंद भी हैं, जाहिर है कंधों पर उठा के लाना था, रात चांदनी थी क्योंकि रोशनी का इंतजाम नहीं होता था। छुपते छुपाते जब दीवार फलांग के गुजरे, तो उनको दूर से एक साया दिखा, थोड़ा करीब आए तो एक औरत थी, और वो इनको पहचान के कहती है अहलन व सहलन या मरसद, यानी वेलकम, कहती है वेलकम ओ मरसद। आवाज सुनी तो मरसद भी पहचान गए, उनाक नाम की लड़की थी जो इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी गर्लफ्रेंड थी, यानी माजी के कपल थे, मोहब्बत करते थे। बस उसने जब मरसद को देखा, कहने लगी कम बेतिन दाना लैलन, आओ आज की रात हमारे साथ गुजारो। अच्छा, मरसद ने क्या कहा कि नहीं, चली जाओ ना, अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया। अभी जब ये बात उसने सुनी, जो अभी उसको क्या दावतें दे रही है, सुना कि मेरी बात नहीं मान रहा, शोर मचा दिया, बस्ती वालों ये तुम्हारे कैदियों को उठा रहा है। फर्क किस बात का था? ये मोहब्बत नहीं थी, ये लस्ट थी। यहां आप फर्क समझिए कि अजीज़े मिस्र का यूसुफ अलैहि सलाम पे डोरे डालना इज नॉट लव, ये लस्ती। ये फर्क अपनी यंग बच्चियों को बताइए, और ये फर्क अपने यंग बच्चों को बताइए। आज हमारी जनरेशन ये फर्क नहीं कर पा रही। हर खूबसूरत लुक को देखकर लड़की सोचती है यही तो सच्चा मुखलिस है मेरे लिए, और यही है वो लस्ट होती है। वो आपके हुस्न को नोचना चाहते हैं, वो आपकी मासूमियत को पीना चाहते हैं, वो आपको दागदार करना चाहते हैं। आप कहती हैं इससे ज्यादा खूबसूरत लड़का ही कोई नहीं, ये तो मेरे से प्यार ही बहुत करता है, ये लस्ट थी। और जो लस्ट की बेस्ड मोहब्बत है ना, वो ऐसे घर की तरह जिसकी फाउंडेशन ना हो। ऐसी लड़कियां फिर जब दो चार धोखे खा चुकी होती हैं, सारी जिंदगी सेटल डाउन नहीं होती, फिर शौहर के घर जाके भी रोती हैं। इसके लिए वक्त पड़ने से पहले अपने बच्चों को तैयार कीजिए। आई लव यू कहने वाला हर बंदा लव नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ एक टाइम पासिंग होती है। आप कहानियां पढ़ें, इस पे एक किताब भी थी सपनों का शहजादा, मैंने उसमें से कई जगह कहानियां पढ़ के सुनाई, यानी सच्ची कहानी वाली बुक है। अगर लिखने याद रही तो मंगवा लेंगे आपके लिए। ऐसे ही फोन कॉल्स पे जो लड़कियां बातों में आ जाती हैं और आजकल तो इंटरनेट से आ जाती हैं, और यकीन करें उसमें एक ऐसी कहानी थी कि चैटिंग पे लड़की लड़के की दोस्ती हुई, मोहब्बत की बातें, और फोन पे जैसे आज देखिए कितने फितने, हमारे हाथों में फोन है, आप अभी इस पे चैट करें, आप दुनिया के किसी कोने में फोन कर लें, कुछ कर लें, या जब हमारे बच्चों के हाथों में ये सब कुछ क्यों है, तो उसमें वजह क्या है कि वो हर वक्त चैट करते हैं। तो कहानी क्या थी कि लड़की लड़का चैट करते थे, काफी अरसे से दोस्ती थी, प्लान कर लिया कि हम अब मिलेंगे। अच्छा, ये एक लड़की करती थी तो उसकी अपने भाई से भी बड़ी दोस्ती थी, बहन भाई बड़े फ्रैंक थे, तो वो आपस में सुनाते होते थे, आज मेरी उससे बातें हुई हैं, आज मैंने उससे मिलना है। लड़का भी और बहन भाई क्लोज बहुत थे, जैसे आज फर्क मिट चुका है। खैर, दोनों जब प्लान करके मिलने गए तो आपको पता है वो कौन थे? वो आपस में चैटिंग कर रहे थे, दुआ की जी, ये सच्चा वाक्य, इसका मैंने किसी आज की बात में सुनाया हुआ, आप सुन सकते हैं। तो बहरहाल, अल्लाह सुबहान तआला ने जो बुरहान की बात की वो कौन सी थी? तकवा की बुरहान थी। ये पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को नुकसान नहीं होगा, और ये नहीं करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कजालिकली नसरिफान हो सू अवल फक्शा, और इसी तरह के ताकि हम फेर दें उससे बुराई और फुहश को। क्यों? इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, हर लफ्ज ही बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह कहते हैं हमने यूसुफ से बुराई और फोहश को हटाया क्योंकि वो हमारा बड़ा चुना हुआ बंदा था। एक लफ्ज होता है मुखलिस और एक लफ्ज होता है मुखलस। इसका फर्क जानना है तो आप सूरत स्वाद की तफसीर सुनिएगा, वहां बहुत डिटेल से हमने इस पे बात की है और बहुत ही यूनिक सा नुकता है। हम कहते हैं ना हम बड़े मुखलिस हैं, नहीं, दुआ करें अल्लाह में मुखलस बना दे। जो बंदा बचेगा अल्लाह उसको बचाएगा। इसे क्या पता चलता है कि जिसके दिल में सच्चाई होती है ना अल्लाह उसको बचा लेता है। ये क्यों टेम्प्ट नहीं हुए? औरत ने इतनी ख्वाहिश की, इतना कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने यूसुफ को बचा लिया, बाकियों को नहीं बचाते। इसकी वजह यह है कि जो अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है अल्लाह ताला उसको बचा लेता है। थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ती है, अगली आयत को देखते हैं, आयत 25 को। वस्तबकल बाब, वो दोनों भागे दरवाजे की तरफ। अगर इस पे रुकूंगी ना, वस्तबका पढ़ेंगे, अरबी जबान की खूबसूरती देखिए, अगर मैं यहां यूं पढ़ दू ना वस्तबका, तो इसका मतलब है कि वो एक भागा, और मैं कहूंगी वस तबका, तो ये का जो है ना ये तस्निया का ड्यूल का है, और वो दोनों भागे। कौन दोनों भागे? इसके नीचे लिखी है अजीज मिस्र की बीवी भी और यूसुफ भी। क्यों भागे? यूसुफ जान बचा रहे थे और बीवी जो थी उसकी उनको पकड़ रही थी। कहां भागे? बाप की तरफ, यानी यूसुफ भागना चाह रहे थे दरवाजे से। इसी कश्मकश में क्या हुआ? वकद्दत कमीसहु मिन दुबुरिन, और फट गई कमीज उसकी पुश्त से। इमेजिनेशन में लाइए ना कि यूसुफ जान बचा के भाग रहे हैं, औरत पीछे से पकड़ना चाहती है, तो कमीज यूसुफ की पीछे से फट गई। दूसरी दफा कमीज का जिक्र आ रहा है। अब हुआ क्या? वह अल्फया सईदहा लदल बाब, और दोनों ने पा लिया उस औरत के शौहर को दरवाजे पर। वो शौहर तो जल्दी आ गए, वो तो मीटिंग कैंसिल हो गई, शौहर सब जल्दी आ गए। अब आप जरा अपने जहन में लाइए कि आपके शौहर 6 बजे आते हैं रोज, और आप खाना रखती हैं टेबल पे गरम, और एक दिन आ जाएं 4 बजे, और अभी आपने लहसुन झीलना शुरू किया था, हाथ पांव पड़ जाते हैं। आम औरतें अपने शौहर के स्केड्यूल से खिलाफ आने पर परेशान हो जाती हैं, और वो गमजदा हो जाती हैं, सब खैरियत है कि क्या। लेकिन अब इस औरत का जरा कॉन्फिडेंस देखिए, इस पे आपको अब किरदार समझ आएगा ये किस कैलिपर की औरत थी। कालत, कहने लगी, फौरन पैंतरा बदला, मा जजाउ मन अरादा बिअहली कसुअन, क्या सजा होनी चाहिए उस शख्स की जो आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा कर रहा था। यानी इल्जाम यूसुफ पे लगा दिया। ये है लस्ट की मोहब्बत, ऐसे ही उनाक ने भी किया था ना, ये लस्ट है, ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत क्या होती है? हम मर जाएंगे, आपको कुछ ना हो। इसने शौहर को देखकर लगा पकड़ी जाऊंगी, लेकिन कॉन्फिडेंट इतनी थी, और इससे मुफस्सरीन कहते हैं कि आदी थी। पहले जुर्म पे बंदा इतना नहीं कॉन्फिडेंट होता, उसका तो रंग उड़ जाना था। ये शौहर आ गया और ये इस हाल में मुझे देखेगा और इसका क्या मामला होगा। लेकिन फौरन कहने लगी, बताओ भाई इस शख्स को क्या सजा दी जाए जो आपकी बीवी से बुराई करे। हाँ मगर इल्लाई यूस जाना, कहने लगी मेरा ख्याल है कि इसको कैदी कर दो, यानी इसको कैद में डाल दो, औ अजाब नलीम, या फिर इसको दर्दनाक सजा दे दो। अब आप देखिए कि जो मोहब्बतें लस्ट पे कायम होती है ना, वो इसी तरह बर्फ की तरह पिघल जाती है। ये आजमाइश में पता चलता है इस चीज को। खैर अब यूसुफ क्या करते, चुप रहते? नहीं, नेवर डू दिस। यहां से एक बहुत खूबसूरत नुक्ता मुफस्सरीन निकालते हैं कि जब आप पर कोई इल्जाम लगे और आप सच्चे हों तो खामोश ना रहें, क्योंकि अपनी जान, अपनी माल और अपनी इज्जत को बचाना भी फर्ज है। इस रास्ते में अगर मर भी जाए इंसान तो उसकी शहादत होगी। तो यूसुफ खामोश नहीं हुए, औरत ने इल्जाम लगाया, यूसुफ बोले, काला हिया रावतनी अन नफसी, कहा नहीं, ये मुझे फिसला रही थी अपने नफ से। अब यूसुफ ने इल्जाम नहीं दिया। यहां से हमारे लिए अमल की बात ये आ गई कि अगर कभी हम पर कोई ऐसा इल्जाम लगे, ससुराली मामलात हैं, खानदानी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, खामोश न रहिए, सच्चाई पेश कर दे, फिर आगे अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोल देगा। साथ ही साथ वह शहीद शाहिदों में अहलीहा, और गवाही दी एक गवाह ने उस औरत के घर वालों में से, अहलीहा हा के नीचे लिख लीजिए, औरत के घर वालों में गवाही दी। क्या गवाही दी? इन काना कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन, अगर है ये कमीज फटी हुई सामने से, कुबुल कहते हैं आगे को, मुकाबला, किबला, तकाबुल, इसी से, कि अगर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब क्या है? फसदकत, औरत सच्ची है। आप भी जरा सोच के देख लीजिए तो बात बिल्कुल क्लियर है ना, कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है इसका अंदर ये कि यूसुफ का इरादा था बुराई का और औरत दिफा कर रही थी अपना, और अगर कमीज नहीं है तो फिर समझिए कि मामला दूसरा है। और वहुवा मिनल काज़िबीन, और ये मर झूठा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन, व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, और अगर है कमीज फटी हुई पीछे से, फकज़बत, तो ये औरत झूठ बोल रही है। वहुवा मिनस सादिकीन, और ये सच्चा है। बात वाजे है ना, क्लियर है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको समझना मुश्किल हो। कहा कैसे करके देख लेते हैं, चलो देखिए। फलम मरा, फिर जब देखा गया क्या, कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन, कि हकीकत में कमीज तो पीछे से फटी हुई थी। काल इन्नहु मिन कैदी कुन्ना, फिर वो बोला, कौन बोला? अजीज मिस्र बोला। उसके सामने अपनी बीवी का गुनाह जाहिर हो चुका था, कहने लगा ये तुम औरतों का मकर है, ये तुम्हारी चालें, इन कैदा कुन्ना अजीम, बेशक तुम्हारी चालें बड़े जबरदस्त होती हैं। और इस बात पे उसको करना क्या चाहिए था, थप्पड़ मारना चाहिए था कि नहीं? कम से कम एक थप्पड़ तो मारता। यहां बात करेंगे सूरत निसा के उस हुक्म पे जिस पे आज पूरे वेस्ट को बड़ी तकलीफ है, और वो कह के बदरीबू होना, नागा देखते हैं ना पीछा देखते, कहते देखो इस्लाम कहते औरतों को मारो। आप सच बताएं इस सिचुएशन में क्या एक मर्द अपनी बीवी को थप्पड़ मारे कि ना मारे? कम से कम थप्पड़ मारे। लेकिन देखिएगा जरा ये कितने प्यार से बोल रहा है, यूसुफ आरिदन हाजा, यूसुफ डोंट वरी, डोंट थिंक टू मच, इराज करो, छोड़ दो, इस बात का ज्यादा जिक्र ना करो। और औरत को कह देता है, वस्तगफिरीली ज़म्बिकी, ए औरत तो अपने गुनाह की माफी मांग, इन्नकी कुंति मिनल खातेइन, तू है खताकार। खातेइन पता क्या होता है? खता किसको कहते हैं इंग्लिश में? मिस्टेक। और मिस्टेक सबसे छोटा काम है, यानी टेक की जगह मिस्टेक हो गई बस, यानी इट्स नॉट सिन। कोई बात नहीं, मैं मानता हूं वक्त का यही तकाजा है, इस हालात में यही है, यानी यस तुमने गलत किया है, तुम इसको ना करो। यहां अब हम बात करेंगे शौहर के किरदार पे। बात वाजे, अजीज मिसर इस हालात में एक, जिसको हमारी जुबान में कह ले, रन मुरीद दिख रहा है और दयूस दिख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा है कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि जो जन्नत की खुशबू को भी ना पा सकेंगे, हालांकि वो दूर से आ रही होगी। और उन तीन लोगों में से एक शख्स कौन है? दयूस। पूछा अल्लाह के नबी, दयूस कौन है? कहा, जो अपने घर वालों में बुराई देखे और उसका एक्शन ना ले। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही, अगर आपको मौका मिल गया कभी, हमें भी तो सूरत नूर भी पढ़ लेंगे, इसी तरह लियान का किस्सा पढ़ लेंगे, वहां भी जिना और बदकारियों के बहुत पोल खुलते हैं। कि आम हालात में तो चार गवाहों की जरूरत है, वरना चुप रहो, स्कैंडलिज्म ना करो। लेकिन अगर शौहर बीवी को देख ले ऐसे हालात में, या बीवी शौहर को किसी गैर औरत के साथ देख ले, तो वहां फिर उनके साथ लियान का मामला किया जाता है, जो तलाक की एक किस्म होती है, और फिर वो सारी जिंदगी के लिए दोबारा कभी नहीं मिल सकते। बहरहाल, अब यहाँ इस मर्द के किरदार से हमें क्या लगता है कि मर्द जो था ना, ये बड़ा लिबरल था। इट्स ओके, अब इस सोसाइटी में तो ये होता है। इसने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब देखिए कि मर्दों के अंदर से जब गैरत चली जाती है ना, तो औरतों के अंदर से हया चली जाती है। ये दोनों साइमल्टेनियस चलती हैं। वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर भी याद होगा, मैं जो मफहूम ही उसका याद है, कि कल जब देखा कुछ औरतों को बेपर्दा, तो अकबर गैरत कौमी से खड़ गया, पूछा कि वो तुम्हारा पर्दा क्या हुआ, कहा वो मर्दों की अकल पे पड़ गया। ये उन मर्दों की होती है जो अपनी बीवियों के पर्दे और निकाब छीनते हैं। बात बनती है ना? इस शख्स को इस वक्त क्या करना चाहिए था? एक्शन लेता। इस वक्त इसने एक्शन नहीं लिया, इग्नोर किया ना, अभी अगले ही किस्से में देखिएगा, अब ये बात इससे कई गुना बढ़ेगी। इंग्लिश में कहते हैं कि निप द इवल इन द बट, बुराई को शुरू में पकड़ लो। चिंगारी बुझा देंगे ना तो बहुत बड़ा आग का अलाव नहीं जलेगा। इस शख्स ने ऐसे वक्त पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जब एक इंसान दौलतमंद भी हो, किसी ओहदे पे पहुंच जाए, यानी जिसको आप स्टेटस कॉन्शियस के, तो दो तीन खराबियां बहुत आती हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे फायदे की हो ना हो, लेकिन हम में से तो कोई इस लेवल का है ही नहीं, हम तो सीधे साधे आम लोग हैं सारे, इसलिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। लेकिन अपर क्लास में जहां लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उनमें बाज दफा होता क्या है कि एजुकेटेड होने का सिंबल बना लिया जाता है कि मर्द बीवियों के फ्लर्ट को बर्दाश्त करें। इट्स ओके, ये तो होगा, इसकी बीवी उसके मियाँ के साथ, उसकी बीवी उसके मियाँ के साथ, ये आम है अपर क्लास में। अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ, हमें ना ही दिखाए वो चीजें, ऐसी दौलत और ऐसा होता अल्लाह हमें कभी ना दे कि जिसमें हमारी इज्जतों पे बट्टे पड़े। यानी हमारे ही अपने बड़ों में ऐसी गैदरिंग्स होती हैं कि घर से जब तैयार होते हैं तो सिटिंग कैसे कराते हैं, आपकी बीवी मेरे साथ और मेरी बीवी आपके साथ। दो चीजें याद रखिए कि जहां तालीम बिल्कुल नहीं होती और जहां तालीम बहुत ज्यादा होती है, और जहां दौलत बिल्कुल नहीं होती और जहां दौलत बहुत कुछ होती है, वहां एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है। लोग कंफ्यूज करते हैं, गैरत को कंफ्यूज कर देते हैं नैरो माइंडेडनेस से। किसी को गैरतमंद देखे ना, कहते हैं ये बहुत नैरो माइंडेड है, और बेगैरती को सिंबलाइज कर देते हैं लिबरल होने से। इट्स ओके, वी आर सो लिबरल, और ये नहीं वो नहीं। आप बताइए, क्या एक शौहर अपनी बीवी के एतवार ना जानता हो? ये लगता है एक बीवी इस हद तक पहुंच गई कि आज घर के मुलाजिम को पकड़ के रह रही है, क्या उसके शौहर को नहीं पता? आपको तो मर्दों में कितनी समझ होती है, मर्द तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रही हैं आप, ये किन हुलिये में आप क्या कर रही हैं। और अक्सर मैंने दीनदारों को देखा है, वो अपनी बीवियों के कपड़ों, लिबास, शमीज पहनो, दुपट्टा मोटा रो, मोटी शलवार पहनो, बहुत क्यूरियस होते हैं। मर्द को बहुत जल्दी पता चलता है कि दूसरे मर्द मेरी बीवी, बहन या बेटी को किस नजर से देख रहे हैं। क्या इस अजीजे मिसर को नहीं पता था? बिल्कुल पता था, लेकिन वही बात कि जब वही का इल्म नहीं होता ना, तो दुनियावी तरक्की जो है वो खराब कर देती है इंसान को। कह के लोग हल्के से, वो कहते हैं ना, नाक से मक्खी हटा दो, इट्स द ट्रेंड ऑफ डे, छोड़ दो, ये क्या बड़ी बात है, ये तो आज के दौर में होता है। और मर्द क्या सोचते हैं कि अगर हमने बीवी पे ज्यादा रोक टोक की ना, तो लोग कहेंगे ये जी मौलवी है, तो हम बुरे नहीं बनते। और नतीजा क्या होता है कि बेगैरती के ऊपर कई लेबल डाल देते हैं, कहीं उसको आउटगोइंग कह देते हैं, कहीं उनका नाम क्या होता है कि जी ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये तो सब करते हैं, कहीं एजुकेटेड होने का नाम लगा देते हैं, कहीं उसको वो इस तरीके से स्पेसिफिकेटेड कर देते हैं कि मर्द अपनी बीवियों पे इन बातों को करते हुए बुरा समझते हैं। वो कहते हैं नहीं छोड़ो। याद रखिए, ये किसी मिडिल क्लास घराने का किस्सा नहीं था, ये अपर क्लास था, ये हाई स्कैटी के लोग थे। नहीं अनिल मुनकर की बजाय नहीं अनिल मारूफ होता है ऐसी सोसाइटीज में, और अमर बिल मारूफ की बजाय अमर बिल मुनकर होने लगता है। और अल्लाह हिदायत दे दे कि जब ये कैफियत आ जाती है तो इंसान बहुत परेशान होता है। तफसीर इब्ने इसहाक है एक, उसमें कुछ कोटेशन है, वो कहते हैं कि इस औरत ने इस हद तक पहुंचने से पहले यूसुफ पे कैसे डोरे डाले, इनके हुसन की तारीफ कर रही थी, यूसुफ तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं, यूसुफ तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, ऐसी हैं। तो यूसुफ उसके जवाब में उसको कह रहे थे, जो भी है मिट्टी में मिलने वाला है। आप सोचते हैं, हाय, एक गैर महरम औरत एक मर्द की तारीफ करती है, ये इतनी बुरी बात? तो जरा आज हम भी अपने इर्द गिर्द दुनिया का जो कल्चर है देख लें, क्या गुलूकार मर्द नहीं होते और अदाकार मर्द नहीं होते? हॉट डैशिंग ऐसे बाज लड़कियां होती हैं, लगता है मर जाएंगी। यकीन कीजिए, मैं सच्चा वाक्य आपको सुनाती हूँ। अब नॉर्वे एक छोटा सा मुल्क है, कैन यू बिलीव कि जहां आबादी कम है, एक 18 से 19 साल के बीच का सिंगर अमेरिका या कनाडा से आया, वहां पे नॉर्वे में उसका कोई वही कॉन्सर्ट था। उसमें हुआ क्या कि पूरे नॉर्वे से यंग लड़के और लड़कियां भरे हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का बाहर का था और जाने वालों में हमारी मुस्लिम लड़कियां ज्यादा थी। फिर हुआ क्या कि जब उसका खत्म हुआ, यानी जो अपना शो था, सामने उनमें से एक लड़की उठी, बेकाबू होके जाके उससे बात करने लगी। जब उसने ये देखा तो बाकी जो लड़कियां हैं, यानी वो भी भागी, और स्टेज इतना भर गया कि वहां भगदड़ मच गई। एक लड़की का पांव जो था वहां से उठ के, तो स्टेप्स होते ना, सीढ़ियां वो दूसरी होती हैं, उसके अंदर फंस गया। इतनी भगदड़ हुई और आखिर आपको पता है उस लड़की का पाँव काट के निकाला गया। पूरे शहर में ये खबर फैली हुई थी, ये मेरे आने से चंद दिन पहले की बात है। उस लड़के को देख के लड़कियां मर मिटी। कोई कहता मैं इसको प्यार कर लूं, कोई कहता मैं इसका हाथ छू लूं, कोई कहता मेरी इसके साथ तस्वीर बन जाए, कोई कुछ करता है। क्या आज ऐसा नहीं? जब आज गुलूकारों और अदाकारों की तस्वीरों को और उनके पोस्टर्स को वार्डरोब्स में लगा देखें और जब हम उनको अपने बेडरूम्स में देखें, तो क्या ये वही कैफियत नहीं है? एक औरत के लिए गैर महरम की ये बात क्या है? एक और चीज मुझे याद आती है, कभी कराची की एक स्टूडेंट थी हमारी, उन्होंने एक मौके पे शेयर किया था कि किस तरह से सोच होती है, और मैंने कभी सोचा नहीं। कह रही कुरान पढ़ने से पहले हम सब ऐसे ही थे जैसे सब होते हैं। कहती मेरी भी यंग बच्ची है, उसके भी कमरे में वाकई एक पोस्टर लगा हुआ था किसी क्रिकेटर का, और कहाँ लगा हुआ था? उसका जो छोटा वार्डरोब है उसमें लगा हुआ था। कहती एक दिन क्या शादी का या क्या मौका था, कोई फंक्शन था, तो मैं अपने कमरे की बजाय अपनी बेटी के उस वार्डरोब में आके चेंज कर रही थी कपड़े। कहती जब मैं चेंज कर रही थी, एकदम मेरी नजर उस दरवाजे पे लगे हुए पोस्टर पे पड़ी, और वो 3D बने होते हैं जिसको लगता है कि वो हमें देख रहे हैं। कहती जब मैं चेंज कर रही थी तो मुझे वो तस्वीर देख के एकदम झुरझुरी सी आई, मुझे लगा कि ये मेरे कद के बराबर का लड़का मुझे देख रहा है। कहती उसी मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि मेरी बेटी तो इधर रोज चेंज करती है। याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए, फाइज लम तस्तही फस नमा शेता, जब तेरे अंदर हया न रहे तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। आज यहां हमें यही चीज दिख रही है कि किस तरीके से इनको देखते हैं, और आज हम इसको बुरा नहीं समझते। आप देखिए फोल्डर्स के ऊपर गुलकारों की तस्वीरें, हमारे बच्चों के अगर आप देखिए कि पेंस के ऊपर तस्वीरें, उनके खाने के डिब्बों पर तस्वीरें, इस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे आहें भरती हैं औरतें कि लगता है कि जान ही निकल जाएगी। अगर वो शादी करेगा भी तो एक से करेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में एक ही एक शादी, चलो मुस्लिम मुल्क में ला के उसको सऊदी अरब में ले आए, चार शादियां कर लेगा, तो ये 4,000 जो पीछे मर रही है इनका क्या होगा? ये कल्चर जब हमारे बच्चे देखते हैं कि प्रिंस चार्मिंग क्या है, वाह ये नहीं, तो फिर मियां नहीं अच्छा लगता। मसला ये है, मिलेगा तो वो सबको नहीं होता। क्या कि एक छाला दिल में लेके लड़कियां निकल आती हैं, सोने जैसा भी मियां मिल जाए वो कंपेयर करेंगी वो हीरो से। ख्वाब जो देखे वो हीरोज के देखे थे, उसमें तो शौहर नहीं देखा हुआ था। और आप देखिए कि ये दुनिया जो है ये फेरी टेल नहीं है, ये रियलिटी है, हकीकत है। आप किसी को खाना देखकर राले टपकाता देखें कितना गंदा लगता है, तो खूबसूरती को किसी की देख के राले टपकाता देखना ये कैसा है? ये नहीं शर्त कि किसी औरत की खूबी ना बयान कीजिए, लड़के की भी खूबसूरती को डिस्पोज नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये किस्सा तो चलता ही जाएगा। इस औरत के साथ इस मर्द ने जो मामला किया वो बात हो गई, बुराई से अल्लाह ने उसको रोक दिया। अब यहाँ आप देखिए कि उसके शौहर को खतरा क्या था, या आप छोटी सी बात हम करेंगे उसके स्टेटस के नाते से, बड़े घर का मर्द था ना, उसको खौफ पता क्या आया कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो मेरी बीवी का स्कैंडल बन जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों के स्कैंडल्स बहुत बनते हैं। अच्छा स्कैंडल बन जाएगा, इस डर से उसने क्या किया? बात छुपाई। लेकिन क्या बातें छुपती हैं, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती, ये बात नहीं छुपी। उसने तो घर के मुलाजिम को चुप करवा दिया कि चुप कर जा, और बीवी को प्यार बड़ी डांट डाल दी कि तू बड़ी खराब है, चल ऐसे ना किया कर। एक्शन कोई ना लिया, लेकिन बात फैल गई।